भगवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय पर चर्चा है, जिसमें भगवान कपिल जीव की गतिविधियों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला श्लोक कृपया इसको दोहराइए। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम् पुंसो रेतः कणाश्रयः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम् पुंसो रेतः कणाश्रयः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम् पुंसो रेतः कणाश्रयः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कर्मणा कर्म फल के द्वारा दैव नेत्रेण भगवान की अध्यक्षता में जंतु जीव देह शरीर उपपत्तये प्राप्त करने के लिए स्त्रियः स्त्री के प्रविष्टः प्रवेश करता है, उदरम गर्भ में, पुंसः पुरुष के, रेतः वीर्य का, कण सूक्ष्म भाग, आश्रयः रहते हुए। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से ही आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधतामिश्र में चला गया हो। वहाँ पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देते हैं, जिसे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेतः कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताया है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकवादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीचो चतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणा हृत्कंठयोसुरा। हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने वर्णन किया कि कैसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं उस जीव को जो पापों में लिप्त होता है। अलग अलग उन्होंने वर्णन किया कैसे उसको ले जाया जाता है, कैसे कष्ट दिया जाता है, फिर नरक में जाकर उसको कैसे कष्ट होता है। और अब उसके बाद वर्णन कर रहे हैं कि जब वो जीव नरक में रहकर पशु योनियों में रहकर कई योनियों में रहकर अब जब फिर मनुष्य योनि को धारण करने वाला है तब भी उसको कितना कष्ट होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ज्ञान का एक लक्षण है, ज्ञान के कई लक्षणों को वो देते हैं और उनमें से एक लक्षण वो कहते हैं कि ज्ञान का एक लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को दुख के रूप में देखना, उसका दुख के रूप में दर्शन करना, ये भी ज्ञान का एक लक्षण है। और यहाँ इस अध्याय में जन्म कितना बड़ा, कितनी कष्टदायक अवस्था है, इसका वर्णन भगवान कपिल करने वाले हैं। तो पहले कुछ श्लोकों में, करीब 11 श्लोकों में भगवान कपिल वर्णन करते हैं कि कैसे माता के गर्भ में आता है। जैसे पहले श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कर्मणा दैव नेत्रेण, तो कैसे माँ के गर्भ में आता है, कैसे वहाँ बढ़ता है और कैसे कष्टों को भोगता है और फिर बाहर आकर भी उसको कैसे कष्ट होते हैं, इसका वर्णन वो आगे करेंगे। तो इन श्लोकों में वो करते हैं और फिर 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक वो जीव जो माँ के गर्भ में है वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करता है। और फिर आगे 22वें श्लोक से फिर जैसे वो बाहर आकर कैसे कष्ट भोगता है, इसका वर्णन किया गया। और अंतिम भाग में इस अध्याय के भगवान कपिल वर्णन करते हैं बुरे संग का क्या प्रभाव होता है, क्यों व्यक्ति फिर से वापस उन्हीं चीजों में पड़ता है, फिर बुरे संग में। और फिर आगे अगले अध्याय में वर्णन करेंगे कि कैसे जीव और कष्ट भोगता रहता। तो एक दृष्टि से हमारे जीवन का वर्णन इन अध्यायों में अब होने वाला है। तो जीव माँ के गर्भ में आश्रय लेता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि चार तरह से जीवों को शरीर मिलते हैं। एक होता है बीज के द्वारा, अर्थात जैसे पेड़ पौधे इत्यादि जो भूमि से प्रकट होते हैं, बीज बोया जाता है और भूमि में से वो उनका फल निकलता है या उनका पौधा निकलता है, अंकुरित होते हैं। ये एक प्रकार के शरीर हमें मिलता है। दूसरे प्रकार का शरीर मिलता है जिसको स्वेदजा कहते हैं, जा अर्थात जन्म लेना। जैसे ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्मजा, पद्मजा अर्थात पद्म से जिनका जन्म हुआ कमल पे, तो ऐसे होते हैं स्वेदजा। स्वेदजा यानी पसीने से, ऐसे कुछ कीड़े हैं छोटे से जो पसीने से जन्म लेते हैं, तो उनको स्वेदजा कहते हैं। तीसरे प्रकार का शरीर हमें मिलता है अंडजा, अर्थात अंडे से। हम लोग देखते हैं कई प्राणी जैसे मुर्गी इत्यादि, वे लोग अंडे से जन्म लेते हैं, तो उनको अंडजा कहा जाता है। और चौथे प्रकार का जीव शरीर हमें प्राप्त होता है माँ के गर्भ से या भ्रूण से। तो ये चार प्रकार के शरीर हम ले सकते हैं अलग अलग योनियों में। और यहाँ पर वर्णन मनुष्य का किया जा रहा है कि कैसे जब मनुष्य योनि प्राप्त होनी होती है तो जीव को क्या होता है। तो वर्णन करते हैं पहले दूसरे से चौथे श्लोक तक। सुखदेव भगवान कपिल वर्णन कर देते हैं कि कैसे पहले दिन पर क्या होता है, दसवें दिन क्या होता है, कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता है, कैसे उसमें चेतना आती है, कैसे उसके शरीर के अंग प्रकट होने लगते हैं, कैसे उसके अंदर भूख काम वासना इत्यादि आने लगती है। ये सारी चीजें धीरे धीरे उसमें प्रकट होती हैं। तो 6 महीने तक ऐसा वर्णन वो करते हैं कि अलग अलग उसके अंग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग चेतनाएं भावना उत्पन्न होती हैं। और फिर जब 6 महीने का होता है संतान तो ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर वो बालक है तो फिर माता के सीधी ओर, माता के उदर में सीधी ओर की तरफ चला जाता है। अगर वो बालिका है तो उल्टे तरफ जाती है, बाईं ओर जाती है। तो बालक दाहिनी ओर जाता है और जो बालिका है वो बाईं ओर। 6 महीने के बाद धीरे धीरे वो एक तरफ हो जाते हैं। ये सारा वर्णन अगर हम भागवत में ये पढ़ रहे हैं दूसरे और चौथे श्लोक में कि सही 10वें दिन क्या होता है, अर्थात जब जैसे पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि वीर्य के द्वारा प्रवेश कर जाती आत्मा तो कैसे उसका शरीर बढ़ता है, ये पूरा वर्णन किया गया। और फिर 6 महीने के बाद अब वो चेतना है पूरा, उसको चेतना आ चुकी है, तब वो एक तरफ हो जाता है। और फिर ऐसे में अब वर्णन प्रारंभ करते हैं कि कैसे उसको कष्ट होता है, किन किन कष्टों को वो सहता है। पहले तो जो माँ खाती है उससे उसको कष्ट होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसीलिए गर्भावस्था में माताओं को बहुत सारी चीजें खाना मना होती हैं, जिसके कारण जो गर्भ में बालक है संतान है उसको कष्ट ना हो। क्योंकि जो भी माता खाती है अगर कुछ ऐसे बहुत तीखा खा लिया इत्यादि तो बालक का शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर वो चीजें उसको नाश करती हैं। तो इसीलिए बालक के शरीर का पोषण माँ जो खाती है माँ के द्वारा होता है। और फिर कैसे पड़ा रहता है वो एक ऐसे थैले में जहाँ केवल मल और मूत्र है, उस थैले में वो पड़ा रहता है। बड़ा बड़ा विकट स्थिति का वर्णन किया गया है, सर झुका हुआ, सर ऐसे पेट में लगा हुआ, हाथ पैर मुड़े हुए, जैसे मानो एक धनुष हो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वो पड़ा रहता है, बड़ा कष्ट है उसको। तो ऐसे कष्ट में वो बार बार रहता है। जो माँ के गर्भ में कीड़े हैं वो फिर उसको काटते हैं, तो वहाँ पर उसको काटा जाता है, वो इतना कभी कभी उसको दर्द हो जाता है कि वो अचेतन हो जाता है। माँ के गर्भ में ही वो बेहोश रहता है काफ़ी समय, क्योंकि कीड़े जो काटते हैं उसको सहन नहीं कर पाता। देखिए ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार जीव को कष्ट होता है जब वो माँ के गर्भ में होता है। और फिर ऐसे बहुत सारे कष्टों को सहता रहता है, तकलीफ होती रहती है। और फिर ऐसे में उसे अपने पूर्व 100 जन्मों के पाप याद आते हैं। पहले ही कष्ट में है, दुख में है, और 100 जन्मों के पाप उसको याद आते हैं। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। अगर हमें अपने 1 जन्म का भी पाप याद आ जाए कि हमने क्या क्या किया था, कैसे कैसे कष्ट सहा था, तो कितने दुखी होंगे। यहाँ उसको 100 जन्मों का पाप, क्या क्या किया उसने 100 जन्मों में, वो सब याद आता है। तो फिर उसके द्वारा और दुख में और कष्ट में होकर फिर वो भगवान को प्रार्थना करने लगता है। भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मैं आपकी शरण लेता हूं। आप अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं आप जीवों पर कृपा करने के लिए। इसीलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो भगवान के रूप का वो वर्णन करते हैं कि पहले रूप का शरण लेंगे, तो ऐसे वो प्रार्थना करता है। फिर आगे वो कहता है कि वो भगवान हैं तो मेरे साथ ही यहाँ पर, लेकिन मैं जिस तरह से प्रभावित हो रहा हूँ भगवान उस तरह से प्रभावित नहीं होते। अर्थात भगवान हैं लेकिन भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होते जैसे हम लोग होते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि मैं आपकी शरण लेता हूँ क्योंकि आप साथ में हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। और फिर वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कहते हैं कि जीव को मुक्त होने के लिए क्या चाहिए। जीव को मुक्त होने के लिए कृपा चाहिए। कहते हैं आपकी कृपा से जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा जीव को मुक्त होना संभव नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ज्ञान से केवल मुक्त हुआ जा सकता है, तो यहां इसको गलत बताया जा रहा है क्योंकि ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है भगवान की कृपा से, केवल कृपा। अगर हमें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो तो हम मुक्त नहीं हो सकते, केवल अपने ज्ञान के बल पर। इसको हमें समझना चाहिए। तो ऐसे वो और प्रार्थना करता है और फिर वो कहता है कि मैं अब मेरी चेतना अब विकसित हो गई है, जागृत हो गई है। मैं तो चाहता था पहले कि यहां से निकलूं इस कष्टमय अवस्था से, लेकिन अब मेरी चेतना बड़ी जागृत हो गई है। आपको मैंने प्रार्थनाएं अर्पण की, आपको देख लिया, अब मेरी चेतना जागृत हो गई है, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, अब मैं यहीं रहना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं बाहर जाते ही माया में पड़ जाएंगे। आपको स्मरण होगा सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही, उन्होंने भी सोचा कि मैं माया में पड़ जाऊंगा, इसीलिए 16 वर्ष तक बाहर नहीं आए, अंदर ही रहे। तो ऐसे ये जीव भी प्रार्थना कर रहा है कि मैं बस अब यहीं ठीक हूं, बाहर नहीं जाना चाहता हूं, बाहर आते ही माया में पड़ जाऊंगा और माया के कारण ही मैं बहुत सारी योनियों में घूम कर आया हूं। जीव कहता है कि अलग अलग योनियों में सुविधा नहीं है मुझे अपनी इंद्रियों को वश में करने का, अपनी गति को जान लेने की ये सुविधा नहीं है, ये केवल इस मनुष्य शरीर में सुविधा है। जहां मैं अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख सकता हूं, अपनी गति को जान सकता हूं। तो अलग अलग योनियों में घूमने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव चेतनाओं के कई स्तर से गुजरता है। हमारे कई प्रकार की चेतना होती है। पहली चेतना होती है जिसे आवृत्त चेतना कहा जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक फूल होता है तो फूल अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। कली होती है, फिर थोड़ा खिलने लगता है, फिर और खिल जाता है, फिर पूर्ण रूप से खिल जाता है, उसमें सुगंध आ जाती है। इसी तरह मनुष्य की चेतना है। तो हमारी चेतना क्या है? पहला स्तर है आवृत्त। आवृत्त चेतना मतलब वो चेतना जो पूर्ण रूप से ढकी हुई है, कोई उसमें हमें ज्ञान नहीं है। जैसे वृक्ष इत्यादि, वृक्ष भी जीव हैं लेकिन इनकी चेतना पूर्ण रूप से आवृत्त है। इन्हें काटा जाए, मारा जाए, उन बारिश हो, धूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवृत्त है चेतना। तो उसको आवृत्त, आवृत्त मतलब ये जो चेतनाओं के स्तर हम बतला रहे हैं, 5 स्तरों का वर्णन करेंगे चेतनाओं का, ये 5ों स्तर किस आधार पर हैं? कृष्ण से दूरी के आधार पर या कृष्ण से निकटता के आधार पर। चेतना का बढ़ना का अर्थ है, चेतना कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे जीव भगवान के निकट जाता है, जितना कृष्ण के निकट है उतनी ही उसकी चेतना अनावृत है, लेकिन जितना दूर है उतनी उसकी चेतना आवृत है, उतना वो जीवन की निम्न श्रेणियों में है। तो पहली चेतना का स्तर है आवृत्त चेतना, और जहां जैसे वृक्ष इत्यादि जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता अपना। दूसरा स्तर होता है कली, कली की स्तन, जैसे कली होती है हम पहले बीज देखते हैं फिर कली को देखते हैं, तो उस रूप में उसको दूसरे स्तर की चेतना कहते हैं, जहां वो अभी खिली नहीं है, मुकुलित नहीं हुई है, केवल कली के रूप में है। तो ये दूसरा स्तर है चेतना का। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कीड़े मकौड़े जिनको जिनको अनुभव होता है किसी चीज का। फिर तीसरी चेतना होती है मुकुलित चेतना। तो पहली चेतना में आते हैं वे प्राणी जो पेड़ इत्यादि हैं, जिनकी चेतना पूर्ण आवृत्त है। दूसरे स्तर पर अन्य पशु इत्यादि आते हैं। मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना, इन तीनों में ये मनुष्यों के स्तर भी हैं। मुकुलित चेतना मतलब अब चेतना ने खुलना प्रारंभ किया, मुकुलित कहते हैं। जैसे फूल मुकुलित होता है, पहले बीज के रूप में होता है फिर मुकुलित होने लगता है, खिलने लगता है, तो उसको मुकुलित चेतना कहते हैं। तो ये चेतना कौन सी है? जहां आभास होने लगता है, जानने लगते हैं। भगवद गीता में भगवान तीन तरह के चेतनाओं का वर्णन करते हैं, तीन उदाहरण देकर। वो उदाहरण देते हैं अग्नि का, कि कैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि कैसे शीशा, दर्पण, ये धूल से ढका होता है। और तीसरा उदाहरण देते हैं उस भ्रूण का जो माँ के गर्भ में ढका होता है। तो तीन चेतनाओं का, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित चेतना होती है। मुकुलित चेतना का अर्थ है कि अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मनुष्यों के पहले स्तर जहां वो थोड़ा बहुत कर्मकांड इत्यादि करना प्रारंभ करते हैं, ये मनुष्यों का स्तर है मुकुलित चेतना। या फिर कहना चाहिए भगवान इत्यादि को नहीं मानते हैं, निरीश्वरवादी। फिर चेतना विकसित होती है, उसको विकसित चेतना कहा जाता है। विकसित चेतना मतलब वो भगवान को जान लेता है, चेतना और खुल गई है। और फिर उसके बाद पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना मतलब जहां उसकी चेतना पूर्ण रूप से भगवान में लगी है, उसको पूर्ण विकसित चेतना कहते हैं। तो चेतनाओं के स्तरों में सबसे पहला आवृत्त चेतना, फिर बीज, फिर कली के रूप में, फिर मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित चेतना। और उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम आवृत्त चेतना से पूर्ण विकसित चेतना की ओर जाएं, निम्न श्रेणी से परम अवस्था तक जाएं। ये चेतनाओं के स्तर हैं। तो ऐसे चेतनाओं का वर्णन प्रभुपाद करते हैं। और फिर जीव कहता है कि मैं कहीं यहीं रहना चाहता हूं, बस बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान कपिल बताते हैं कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो एक बड़ी तेजी से हवा का दबाव अंदर से आता है और बालक को नीचे की ओर धकेलता है। वो जाना नहीं चाहता, वो धकेलता है नीचे, और सिर के बल उल्टा हो जाता है बालक, सिर के बल गिरता है नीचे बाहर। बालक जब जन्म लेता है तो पहले सिर बाहर आता है, तो गर्भ में ही उल्टा हो जाता है, ऊपर से इतनी तेज हवा का दबाव होता है कि उसको नीचे फेंका जाता है जोर से। इसमें वर्णन करते हैं कि धड़ाम करके जमीन पर गिरता है। पहले ऐसे प्रथा थी कि माताएं जब जन्म दिया करती थी तो खड़े हुआ करती थी, और उस समय बालक गिरता था नीचे। यहाँ लिखा हुआ है भागवत में कि बालक गिरता है नीचे, तो ऐसे गिरता है, खून से लथपथ, खून लगा होता है शरीर में और रोता है। और जिस समय वो, अब वो भूल क्यों जाता है? अभी अभी 100 जन्म याद हुए उसको माँ के गर्भ में, लेकिन जन्म लेते क्यों भूल जाता है? उसका भी वर्णन भगवान कपिल करते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि अगर हम आत्मा हैं तो हमें अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद है, अगर हमने पूर्व जन्म लिया। तो यहां कहा कि 100 जन्म याद आ गए, लेकिन जब जन्म लेता है तो क्योंकि उसको बाहर निकलने के समय इतना कष्ट होता है, छोटा सा स्थान होता है उससे बाहर निकालते हैं उसको बहुत तेज हवा के द्वारा, इतना कि कभी कभी उसकी सांस बंद हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और ऐसे इतने कष्ट के कारण इतना जो उसको एक सदमा लगता है उससे वो अपना पूर्व जन्म भूल जाता है। ये भी भगवान की कृपा है। अगर हमें वो सब याद रहे कि क्या क्या हमने किया तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ऐसे कारण, ऐसे दर्द होने से, ऐसे इतना कष्ट की सांस भी बंद हो जाती, कभी कभी देखिए बालक जन्म लेता है सांस नहीं ले पाता, उसको कुछ कुछ किया जाता है तो कभी कभी इतना कष्ट हो चुको हो जाता है। तो ऐसा वर्णन किया कि फिर बालक जन्म लेता है और फिर जन्म लेकर अब उसको बहुत सारी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसा वर्णन है, प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, श्लोक में भी कहा गया कि उसको वो सब खिलाया जाता है जो खाना नहीं चाहता है, क्योंकि बोल नहीं पाता, कुछ जानता नहीं है, रोता है, उसको भूख लगी है तो नर्स सोचती है कोई कुछ दर्द हो रहा है, उसको कुछ दवाई दे देती है, प्रभुपाद लिखते हैं उसको दवाई दे देती, जबरदस्ती कड़वी दवाई खानी पड़ती, खाना नहीं चाहता तो उसका कष्ट प्रारंभ हो जाता है, रोता है बालक जन्म लेते ही क्योंकि इतने कष्ट से अभी निकला है, बहुत रोता है। और फिर आगे आगे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, जब छोटा होता है तो उसको केवल खेलने में आनंद होता है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, जब बाल अवस्था होती है तो बालक क्रीड़ा सकता, अपने खिलौनों में, अपने खेल में आसक्त रहता है। तरुणावस्था तरुणी सकता, ये बड़ा हो जाता है तो काम वासना तीव्र हो जाती है। वृद्धावस्था चिंता सकता, जब बूढ़ा हो जाता है तो केवल चिंताएं करता है। किस चीज की चिंता? या तो अपने परिवार की चिंता करता है, अपनी स्थिति की चिंता करता है, भोग नहीं कर पा रहा उसकी चिंता करता है, शरीर साथ नहीं दे रहा उसकी चिंता करता है। वृद्धावस्था चिंता सकता, और इसीलिए वो दुख करते हैं, पर ब्रह्मणी को अपिनाश सकता। दुख की बात यह है कि लोग क्रीड़ा से आसक्त रहते हैं, तरुणी से आसक्त रहते हैं, चिंता से आसक्त रहते हैं, लेकिन परब्रह्मणी को अपिनाश सकता, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से कोई आसक्त नहीं होता, ये दुख की बात है। तो बालक जन्म लेता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके अंदर मिथ्या अहंकार या मिथ्या मान प्रतिष्ठा की भावना बढ़ जाती है, उसके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, ये सब बढ़ने लगता है उम्र के साथ साथ। और फिर वो इस जगत में बहुत सारे कार्य ऐसे करता है जिससे उसको नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, अर्थात इंद्रिय के स्तर पर इंद्रियों की तृप्ति के लिए केवल कार्य करता है, तो फिर से जहां से आया था वहीं पर उसको जाना होता है, अर्थात नारकीय यातनाओं को भोगने के लिए। इस पूरे चीजों को भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक बहुत सुंदर भजन में सिखलाते हैं। एक भजन है, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विद व्यथा, तो वो सिखलाते हैं कि कैसे जीव जो गर्भ में होता है, यही चीज जो इस अध्याय में कही गई है उसको वो कहते हैं कि जीव जब घर में गर्भ में होता है माँ के, तो एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांछीले ए दीन दासे, कि वो कहते हैं कि एक बार जब मैं गर्भ में था आपके दर्शन हुए, जैसे यहां पर दर्शन करके प्रार्थना अर्पण कर रहा है जीव, तो एक बार आपके दर्शन हुए लेकिन उसके बाद फिर आप चले गए, मुझे मिले नहीं, फिर जन्म हुआ मेरा, मोह में पड़ गया मैं, जन्म हो ला पोड़ी माया जाले, माया के जाल में पड़ गया। माया जाल क्या है? माया जाल ये है कि माया आपको वो मानने पर मजबूर कर देती है जो आप नहीं हैं, ये शरीर है। तो इसीलिए माया जाल, पौड़ी माया जाले, ना होई लो ज्ञान लब, कोई ज्ञान नहीं था और भूल गया, क्योंकि अभी देखिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपकी भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन जब बाहर आता है, जन्म लेता है, भूल जाता है। भूली या तुम्हारे हरि, भूल गया मैं क्या प्रार्थनाएं कर रहा था अंदर, कितना कष्ट सह रहा था अंदर। ये जो कष्ट होता है, बालक प्रार्थना करता है मैं फिर से कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर लेता है। प्रभुपाद उदाहरण में लिखते हैं, जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय जो कष्ट होता है, माँ सोचती है बस अब इसके बाद किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, इतना कष्ट कभी नहीं सहन करूंगी, लेकिन फिर और एक संतान को जन्म दे दे। या कोई बीमार होता है, किसी बड़ी बीमारी से उसका ऑपरेशन होने लगता है, तो वो सोचता बस इसके बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि फिर से बीमार होना पड़े, लेकिन फिर से वही करता है। इसी तरह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि फिर से मैं कभी कोई गर्भ धारण नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, जीवन सफल करूंगा, लेकिन फिर भूल जाता है और फिर से वही पापमय कार्यों में लग जाता है। भगवान की भक्ति जो जीवन का उद्देश्य है उसको भूल जाता है और इसीलिए नरकीय यातनाओं को भोगने के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से वो अपने गति को नारकीय बनाता है। और क्यों नारकीय गति होती है, इसका वर्णन आखिरी विभाग में 32 श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक या 46वें श्लोक तक यहाँ पर भगवान कपिल करते हैं कि क्या कारण है, और वो बताते हैं काम वासना। एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, या फिर उन लोगों के प्रति, उन लोगों का संग जो स्त्रियों से कामुक हैं, या फिर जो स्त्री आसक्त हैं। यहां जब स्त्री शब्द कहा जाता है तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, क्योंकि आगे ये भी वर्णन किया गया। एक वर्णन वो करते हैं भगवान कपिल, कैसे पुरुष स्त्री से आसक्त होकर नरक की ओर जाता है। दूसरी ओर ये भी वर्णन करते हैं कि कैसे स्त्री पुरुष से आसक्त होकर वो भी नरक की ओर जाती है। तो इसीलिए कभी कभी लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को बहुत बुरा कहा गया है शास्त्रों में, ऐसा क्यों कहा गया। ऐसा नहीं, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये ही ये जो मूलतः आसक्ति, ये वासना, इसको निंदा की गई है। और यहां पर वो कह रहे हैं भगवान कपिल कि किस प्रकार भगवान ने स्त्री को बनाया ताकि पुरुष उससे आकर्षित हो सके, पुरुष को बनाया स्त्री आकर्षित हो सके, और फिर उस आकर्षण के कारण जीवन में बद्धता आती है। बहुत हम लोग उदाहरण देखते हैं इतिहास में, तो वो कहते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किए गए, देखिए काम वासना से, माया से कौन प्रभावित नहीं होता। एक उदाहरण दिया इसमें ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी भी अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होकर भागने लगे थे पीछे पीछे। तो कहते हैं कि इस, भगवान कहते हैं कपिल कि इस ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किए गए जितने भी जीव हैं, उनमें केवल नर, केवल नारायण ऋषि जो है, नारायण ऋषि, उनको छोड़कर बाकी सब भगवान के माया से, काम वासना से प्रभावित हैं। तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो प्रभावित नहीं है। केवल भगवान नारायण ऋषि, ऋषि को छोड़ दें नारायण ऋषि को, उनके अलावा सब है। और इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक समय नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने देखा, और इंद्र जब देखते हैं कि कोई तपस्या कर रहे हैं तो पता नहीं उनको जरा चिंता हो जाती, अपना सिंहासन हिलने लगता है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे विश्वामित्र कर रहे थे या कोई भी, हम देखते हैं जहां भी तपस्या ज्यादा होने लगे तो देवता प्रभाव करते हैं। ऐसे ही भक्ति भी है, जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ने लगे तो यही देवता जो हैं वो प्रयास करते हैं, हमारे सामने बड़ी सुविधाएं आ जाती हैं, हम लोग आलसी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये प्रभाव है कि जब आप तपस्या करने लगोगे, भगवान को प्राप्त करने लगोगे तीव्रता से, तो बाधाएं आएंगी, निश्चित बाधाएं आए तो जानना चाहिए कि हम लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं। जब प्रभुपाद आंदोलन शुरुआत किए थे तो काफी लोग निंदा कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा अच्छा है निंदा कर रहे हैं, मतलब हम लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं, हमें चलते रहना चाहिए। तो बाधाएं आएंगी। तो अब देखिए कि नर नारायण ऋषि, उनको भी देखकर इंद्र बड़े विचलित हो गए कि ये तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, क्या इंद्र बनना चाहते हैं? अब नारायण ऋषि को इंद्र बनने की क्या, उनके लिए तो जैसे आप मानो कि आप कहना चाहते हो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट चींटी बनना चाहता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट को चींटी बन के क्या लेना, तो चींटी को ऐसे ही मसल दे। तो वो भगवान हैं सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, उनको एक जरा से ब्रह्मांड में इंद्र का पद लेकर क्या मिलने वाला, लेकिन इंद्र ये तो तकलीफ देना है। तो इसने सुंदर सुंदर अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं को भेजा कि जाओ इनकी तपस्या में बाधा डालो। देखिए हर समय इंद्र करते हैं, विश्वामित्र मुनि अच्छी बली तपस्या कर रहे हैं, भेज दिया मेनका को, क्या जरूरत थी, बेचारा कोई कर रहा है तपस्या, उसको करने देना चाहिए, लेकिन हमारा सिंहासन बना रहे इसीलिए उन्होंने भेज दिया। तो जब भक्त भी भक्ति करता है तो उस समय ऐसी बाधाएं आती हैं, कभी प्रलोभन आ जाते हैं, कभी सुविधाएं आ जाती हैं, माया कई तरह से विचलित कर सकती है। ऐसा मत सोचिए कि केवल कष्ट देकर विचलित करेगी, कभी कभी आराम देकर विचलित कर देती है। बहुत आराम से, कोई चिंता नहीं, आराम करो, सो खाओ पियो, हो गया बहुत, 10 साल ब्रह्मचारी रह लिए, 5 साल रह लिए, अब आराम करो, खाओ पियो, सो, सब सुविधा है, अब सीनियर हो गए हो, अब सब आप लोग आपकी सेवा करने वाले हैं, बड़े आराम से। ये भी माया है। जब ये मन में आ जाता है कि अब मैं वरिष्ठ हो गया हूँ, अब मुझे सुविधा मिल सकती है, ये भी माया है। या फिर माया कभी कभी कष्ट देती है, भक्ति करना चाहते हैं। अभी हम 2 दिन पहले किसी से बात कर रहे थे, हम उनको कह रहे थे आप जप करना शुरू कीजिए, तो वो कह रहे थे कि जप करने से, मैंने पहले बहुत बार शुरू किया लेकिन जप करते ही मेरे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। मैंने कहा अरे पहली बार हम सुन रहे हैं। बोले नहीं, ये मेरा अनुभव है कि जैसे ही जप करना प्रारंभ करते हैं कष्ट शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हम बंद करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो अभी हमने उनको कहा आप शुरू कीजिए, कष्ट आए तो हमें फोन कीजिएगा, लेकिन शुरू कीजिए। तो देखिए अब कोई जब करना चाहता है उसी समय, और वो हम कह रहे थे ऐसे नहीं प्रभु जी, 3-4 बार हो चुका है, जैसे जब प्रारंभ करते हैं जीवन में कष्ट आ जाते हैं। तो देखिए माया जब भी नहीं करने देती है, बाहर जाने का मार्ग है नहीं, पकड़ के रखना। माया को अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है ना कि सब मेरे अधीन रहे, कोई जाए नहीं, एक भी जन जाने लगता है तो पकड़ के नीचे खींचती है। तो देखिए अलग अलग तरह से प्रभाव होगा, जैसे काम वासना का प्रभाव, जैसे नारायण ऋषि के और भेजा इंद्र ने, या सुविधाओं को भेज देंगे, या फिर मन में गलत भावनाओं को भेज देंगे, आलस को भेज देंगे, व्यक्ति आलसी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया, कामदेव को भेज दिया, जाओ तीर चलाओ उनके ऊपर, उनको ऐसा तंग करो कि बस वो सब तपस्या छोड़कर इन अप्सराओं के पीछे भागने लगे। और किसके लिए कर रहे हैं, नारायण ऋषि। तो तपस्या कर रहे थे, वो कामदेव आए, सारी अप्सराएं आए, घूमने लगी, तो भगवान ने आंख खोलकर देखा, अच्छा इंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा है, तो उन्होंने अपने शरीर से उनसे भी सुंदर अप्सराओं को प्रकट कर दिया उन्हीं के सामने, और वो उनके सामने उनकी कोई सुंदरता ही नहीं रह गई, अपने आप को बहुत सुंदर समझ रही थी कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं आई हैं, और भगवान ने ऐसे ही अपने शरीर से प्रकट कर दिया, और इंद्र को कहा ले जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हें। इंद्र दे रहे थे उन्हें, भगवान ने उनको कहा ये लो मेरी तरफ से उपहार ले जाओ। अर्थात भगवान दिखा रहे थे कि जिस सुंदरता से तुम मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो मैं उसका स्रोत हूं, सारी सुंदरता मुझसे आती है, मुझे किस सुंदरता से तुम प्रभावित कर सकते हो। तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया इंद्र को, जाओ ये ले जाओ, और इंद्र बेचारा पानी पानी शर्म हो गए, क्या करूं कुछ समझ नहीं आया। तो इसीलिए यहां कहा गया कि केवल नारायण ऋषि एक हैं जो काम वासना से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, बाकी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किए हुए हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है जहां हम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने सही गति सही गंतव्य को जान सकें। तो यहां पर आगे कहा गया है कि हम ऐसे अंधकूप में गिरे नहीं काम वासना के कारण। जब व्यक्ति के काम वासना बहुत बढ़ जाती है तो वो अंधा हो जाता है, उसको दिखता नहीं है कुछ भी। जैसे एक हाथी का उदाहरण है, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को पकड़ा जाता है एक हथनी को भेजकर, एक प्रशिक्षित हथनी को भेजा जाता है, हथनी उसे प्रभावित करती है, हाथी पीछे भागने लगता है, हथनी चलते 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 उस स्थान पर आती है जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा किया हुआ है और उसको घास से ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है कि वो गड्ढा है, लेकिन हथनी को प्रशिक्षण है, उसको पता है। तो भागते भागते आती है, जैसे ही गड्ढे के पास आती है अचानक घूमकर चली जाती है गड्ढे को छोड़ते हुए, लेकिन जो हाथी पीछे पीछे भाग कर आ रहा है उसको नहीं पता, वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, फिर बांध कर उसको पकड़ लिया जाता, शिक्षण दिया जाता। तो देखिए, हाथी जैसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी काम वासना के अंधकार के कारण पकड़ा जाता है, इंद्रियों के कारण ही। अगर इंद्रियों को वश में नहीं किया जाए तो व्यक्ति काम वासना के वशीभूत हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है पतंगे का, एक कीड़े का, जो अग्नि को देखकर उसकी ओर जाता है, जैसे उसको अग्नि प्रकाश दिखाई देता है सीधा चला जाता है, मर जाता है। तो अपनी आंखों को वश में नहीं रख पाता, इसीलिए मर जाता है। मछली का उदाहरण दिया जाता है जिह्वा, मछली अपनी जिह्वा को वश में नहीं रख पाती, इसीलिए कुछ खाने को मिला पकड़ लेती है, फिर वो फंस जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पतंगे की मृत्यु आंखों के कारण और मछली की मृत्यु जिह्वा के कारण हो जाती है, और हाथी स्पर्श के कारण, बस उसको कुछ स्पर्श लगता है तो उसके लिए वो हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसीलिए भक्तों के लिए हम लोग पिछले अध्यायों में वर्णन कर रहे थे गुणों का, तो उनमें से एक गुण था मित भूख। मित भूख मतलब बहुत कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारी इंद्रियां बलवान होंगी और हमें कष्ट देंगी, इसलिए जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने से या तो नींद आती है या फिर हमारी जो वासनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, फिर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें बस वो चीज़ चाहिए, फिर आदमी पागल हो जाता है, पागलपन की हद को भी पार कर देता है, अपने ही नुकसान को देख नहीं पाता। तो इसलिए इन इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। और अंतिम दो श्लोकों में इस अध्याय के भगवान कपिल मार्ग देते हैं कि कैसे रहना चाहिए हमें इस जीवन में, तो वो समझाते हैं, हम अनुवाद को पढ़ेंगे। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस माया में संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तो उद्देश्य है कि हमें अपने संबंध को, बंधन को काटना है, इस जगत से जो संबंध बना हुआ है उसको तोड़ना है और भगवान से संबंध को स्थापित करना है, जिसका एकमात्र मार्ग है भगवान की भक्ति।